ओम शांति। आज का दिन क्या है? बाप दादा का मिलन का दिन है। ऐसे मिलन के दिन में क्या लक्ष्य लेके हम बैठना चाहिए? यही लक्ष्य लेना चाहिए, जहाँ भी बैठे, चाहे यहाँ ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे सेंटर पे हो, जहाँ भी हो, मैं अकेला बाप दादा से मिल रहा हूँ। इसके लिए हमारा स्थिति सवेरे से लेकर ऐसे बना है तो हम ये अनुभव कर सकते। पिछले बारी जब अव्यक्त बाप दादा आया था, आने से पहले सूरज भाई का क्लास हुआ था, उसमें एक ही शब्द था, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसका कमेंट्री करके योग करा रहा था भाई जी। मैं ऐसे काम करते करते कुछ काम कर रहा था, वो एक सेकंड के लिए मैं वहाँ स्टोर में ही बैठा, एक अलौकिक अनुभूति हुआ, क्योंकि लक्ष्य था। इस तरह हम ब्राह्मण जीवन के अंदर, अभी समय बीत गया जो सन्मुख बाबा से मिले, मगर हम वतन में जाकर बाबा से मिलने का समय है। इसलिए हम क्या लक्ष्य रखना है, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, मगर स्थिति जब बना के रखेंगे पूरा दिन का, बाबा का अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकते हैं। हम अभी टॉपिक पे आते हैं, माया का अनेक रूप, उसमें आज का टॉपिक है। भाई साहब ने बड़ा अच्छा टॉपिक ढूंढ के मेरे लिए दिया है, क्योंकि मेरा हर रोज उसका हर क्षण परीक्षा चलता ही रहता है। माना डिपार्टमेंट ऐसी है, उसके कारण ये चलता ही रहता है, दूसरों को दोषी बनाना। निशानी ऐसी होती है, दूसरों को दोषी बनाना। मगर यदि इसका बहुत बचपन से हम एक चीज अज्ञान काल में भी हम देखते थे, दूसरों को आपने ऐसा किया, आप ये करते हो, मगर हम बचपन में ये कहते थे कि आप एक उंगली आप दिखा रहे हो, मगर तीन उंगली आपके तरफ है, और ऊपर लौकिक में बोलते थे परमात्मा ऊपर देख रहा है। मगर यहाँ हम ब्राह्मण जीवन में बाबा ने क्लियर बताया, दूसरों को दोषी तब ठहराएंगे। दोष शब्द कहाँ से हुआ? दो के बीच में व्यक्ति को लाने से दोषी, दो के बीच में अर्थात मैं और बाप, बाप के बीच में जब भी कोई दूसरों को लाया या दूसरों की ये कर दिया, मिक्स कर दिया, तो वहाँ दोष हो जाता है। इसलिए तीन शब्द बाबा ने दो तीन अव्यक्त मुरली पे पहले, परचिंतन, परमत, परदर्शन, ये तीनों जब आ जाती है ब्राह्मण जीवन में, दोषी हो जाते हैं। मगर दोषी क्यों होते हैं? दोष होता क्यों है? दूसरों को हम दोष क्यों ठहराते हैं? क्योंकि हम बचना चाहते हैं। ये क्या है, ब्राह्मण जीवन का एक सुंदर ढाल हो गए। बाबा ने हमको ज्ञान क्या दिया है? क्या ज्ञान दिया है? ड्रामा का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। यदि ज्ञान के डेप्थ में जाए तो किसी को भी दोषी नहीं देख सकते हैं। ड्रामा में फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं हूं, मेरे को पता है ये चिट्ठी नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, मगर आए हैं, उनको देना तो ही है, मगर कैसे? उनको एक बार समझा देंगे, भाई आप ऐसा क्यों लाए, कम से कम आगे के लिए तो ध्यान रखो। उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक मधुबन एक ऐसी चीज है, बाबा का घर है, शांतिवन वो सब है, मगर ये बाबा का कर्म भूमि है, यहाँ कड़कली ला यूज नहीं हो सकता है। इसीलिए अपना ये परिवार है। अभी यहाँ जो आते हैं, हर एक यही महसूस करके जाते हैं, हमारा जो अनुभव कहता है कि ये हमारा घर है। घर कब अनुभव करते? जब यहाँ जो रहने वाले वो उनके अंदर वो फील है, ये हमारे परिवार के सदस्य है, तब वो घर महसूस उनको होता है। जब गुलजार दादी क्लास कराती थी मधुबन वालों का, मधुबन ये मधुबन चार दीवार से मधुबन नहीं बनी है, वातावरण ऐसा नहीं बनी है। यहाँ जो रहने वालों की धारणा के अनुसार, उनका योग के वाइब्रेशन के अनुसार वो बनी है। यहाँ देखो आप आदि से लेकर 1950 से जब कराची से यहाँ शिफ्ट हुआ पाकिस्तान से, 50 से लेकर अभी तक आप यदि देखा गए तो एक योगी कहाँ ना कहाँ तपस्या करता हुआ आपको मिलेगा 24 घंटा, क्योंकि ये तपस्या भूमि है, त्याग भूमि है। इसलिए हम दूसरों को दोषी कब ठहराते हैं? जब हमारे अंदर कोई भय है या अरे ये मैंने गलत किया है मगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, वो उसके ऊपर टालने का कोशिश करता है, मगर वहां ये नहीं सोचता है कि ड्रामा में इसका पार्ट ये फिक्स है, मेरा पार्ट ये फिक्स है। क्योंकि जैसा अभी हमारे बाबा ने पूरा दिनचर्या दिया, अमृत वेला है, अमृत वेला में वो 50 साल वाला भाई सो रहा, मैं सोए तो क्या होगा? फिर कहेंगे रात को इतना देर जागा, मैं अभी कैसे उठ सकूंगा? मगर हम यहां ये नहीं सोचते कि ये हमारा अकेले का है, ना कि उनको देखने का है। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, जो भी अभी बाबा से अमृत वेला योग करेंगे, वो किसके कमाई में जाएगा? उनको देखने से हमको क्या हुआ, घाटा हो गई कि नहीं? यहां क्या हुआ, दूसरों को दिखाने से हमारा नुकसान हो गई? ऐसा हम नुकसान को देखना है या क्या स्वयं को देखना है? इसलिए मेरे बार बार एक बात भाई साहब का जचता है या बार बार वो बुद्धि में आता है, मैं अकेला हूं इस मार्ग में, मैं भले हाल में इतने लोग बैठे हैं, मैं बाबा से मैं ही प्यार कर रहा हूं, तब देखो उसका आनंद, उसका मजा, उसका खुशी क्या होता है। जहां भी बैठो योग में, बाबा से मैं ही प्यार कर रहा हूं, तब देखो उसका कितना आत्मा को संतुष्टि आती है, कितना उसके अंदर एक प्यार उमड़ता है, तब देखना आपको ना चाहते हुए भी प्यार की आंसू बाहर आएगी। जब वही हम दूसरों को देखेंगे वो फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने हमको ऐसी ज्ञान दिया है, ड्रामा का ऐसी ज्ञान दिया है। बाबा कहा बच्चे क्या, सी नो इविल, दूसरों को नहीं देखो, दूसरे बातों को नहीं देखो, सी फादर, ब्रह्मा बाप को देखो। आज देखो हमारे सामने साकार बाबा का जीवन चरित्र यदि पढ़े तो पता चलता है बाबा ने कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं रखा। जब अखबार में इतना वहां निकला था, निर्मल शांता दादी ने बाबा के पास गया, उसके ऊपर हम केस करें, बाबा ने क्या बोला होगा, ये भी बाबा का बच्चे है, बाप कभी बच्चों के ऊपर केस कर सकता है? क्या भावना थी बाबा, क्या वो फीलिंग थी? अभी हमारे अंदर वो फीलिंग, वो भावनाएं है। ये क्या है, ये ज्ञान मार्ग में अपने आप को चेक करना होगा, अपने आप को अंदर होकर जांच करना होगा। मैं आत्मा ऐसा श्रेष्ठ परफेक्ट हूं क्या दूसरों को दोष दूं? मेरे अंदर ही दोष है तो दूसरों को दोष देने की अधिकार मेरे में नहीं है, या दूसरों को उंगली दिखाने की मेरे अथॉरिटी नहीं है। कोई एक फिल्म में कोई गीत था, मेरे दीवाने को पत्थर नहीं मारो, ऐसा कुछ था शब्द, जो पहला पाप कोई भी पाप नहीं किया हो वही मार सकता। क्या हम ब्राह्मण जीवन में बाबा के बच्चे बनने के बाद कितने गलतियां किया होगा, समझ होते हुए भी ये गलत है, समझते हुए भी कई गलतियां तो किए होंगे, तब हम दूसरों को क्यों दोषी ठहरा सकेंगे, दूसरों के ऊपर हम क्यों देखें। उसलिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, अपने आप को स्कैनिंग करना है, अपने आप को जांच करना है। डॉक्टर गोली देगा और डायरेक्शन देगा, मगर अपना शरीर को, अपना खुद को रीड करना होगा, तब जाके उस बीमारी से छूट सकेंगे। क्योंकि क्या होता क्या है, हम राजयोगी लाइफ में आज सफज मौसम मौसम ठंडी लग रहा, आज क्लास में नहीं गए तो क्या हुआ, वो भी देखो यही है, इतना पुराना भाई यहां ये खड़ा है, मुरली सुन मुरली चल रहा है, इधर गप्पे मार रहा, देखा किसको, नुकसान किसको, खुद को हुआ, घाटा किसको पड़ा, खुद को हुआ। मगर बाबा का श्रीमत क्या है, श्रीमत है आप अपने को देखो, टाइम अनुसार जाओ, बाबा सामने है, साकार बाबा। इतना क्यों, हम दादी को प्रैक्टिकल देखते थे, एक बार की बात है, दादी ने मेरे को बुलाया कुछ बात करने के लिए, मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, दादी ने बुलाया इधर आओ, कहाँ जा रहे हैं, दादी इंटरनेशनल यो, दादी सब काम छोड़ दिया, साथ में ही चल पड़ी इंटरनेशनल योग में, बहुत कुछ काम चल रहा था, बात कर रहे थे। इतना दादियों का एक एक यदि कर्म देखे तो ये पता चलता है कि उनके अंदर कितना धारणाएं परफेक्ट थी। एक बार निर्मल शांता दादी, मैं योग सवेरे अमृत वेला योग के बाद दृष्टि लेते थे, दृष्टि दे रहे, फिर उसके बाद मैं हॉल से बाहर निकला, खिटकियां बंद कर रहा था, ऐसा जोर से बंद किया, फिर बंद करने के बाद एक भाई को भेजा दादी ने, एक कौन है, फिर दादी ने बुलाया, बुला के दादी कहा क्या कर रहे थे, दादी खिड़की बंद, क्या कर रहे थे, खिड़की बंद कर रहा था, क्या कर रहे थे, खिड़की बंद, तीन बार पूछा, प्यार से बंद करना चाहिए, मगर एक दोष की भावना से नहीं देखा। एक हंसी की बात सुनाता हूं, वो भाई इधर भी है, एक बार मधुबन के अंदर आम का ट्रक आया था, ट्रक आया तो वो ट्रक बड़ा वहां खाली करने के लिए खड़ा किया, वो भाई सोचा थोड़ा ट्रक को थोड़ा पीछे ले लेंगे या आगे ले लेंगे, ऐसा सोच के, वो कभी ड्राइवर नहीं है ना, ड्राइविंग आता है उसको, वो गया ब्रेक दबाया, तीन गाड़ियां ठप टोक दिया, तीन गाड़ियों को जैसे ही ठोका, मगर ठोकने के बाद उस आत्मा का विशेषता देखो, वो ठोकने के बाद फिर जाके वो ट्रक खाली कर रहा, उसको कोई इफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, उसके बाद वो जाके दादी को समाचार दिया, यीशु दादी को, दादी ऐसा हुआ, दादी और बड़ी दादी यीशु दादी इतना जोर से हंसे उनका नाम सुनते ही। मैं इसके ये बोलने का भाव ये है कि कभी भी दोषी दूसरों को ठहराने से हमको नुकसान होता है, दादियां साकार बाबा कभी दूसरों को दोषी नहीं ठहराया। इससे हम मुक्त होना है तो एक ही चीज है कि हमारा ब्राह्मण जीवन की जो लाइफ है, लाइफ के अंदर जो दिनचर्या है, दिनचर्या के अंदर परफेक्ट रहना है। अर्थात अभी मेरे को याद आता है, मैं कितना साल हो गए, 4-5 साल हो गए होंगे, कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ मेरा, कभी भी रात को 11 भी बजता है, कभी कभी लेट भी होता है, भले नींद डिस्टर्ब भी हो, मगर लक्ष्य रखा है, लक्ष्य रखने से लक्षण स्वतः ही आती है। यदि हम दूसरों को देखकर हम अपना बातों के कारण, जैसा रात को नींद नहीं आया, मच्छर काटा, वहाँ बाहर आवाज़ हो रहा था, ये वो सब बातें आती है, परिस्थितियाँ विपरीत आता है, मगर परिस्थितियों को मन अपने बाबा ने क्या कहा? आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान के सामने ये सब बातें क्या है? एक मच्छर जैसा है। क्योंकि हमारे अंदर जब दृढ़ता पूर्वक कार्य करना है, हमको पास विथ आनर होना है, बाबा को हम याद कर परफेक्ट बच्चा बनना है, निर्दोषी बनना है, दोषी नहीं निर्दोषी, निर्दोषी बनना है, तो लक्ष्य को हम टाइट करते जाओ, लक्षण स्वतः आ जाएगा। क्योंकि हम हमारे सामने आप कहेंगे भाई बाबा तो बाबा है, था शिव बाबा, था ब्रह्मा बाबा, था उनके अंदर वो शक्ति था, मगर दादियां तो परफेक्ट अपने सामने है, दादी जानकी है, अमृत वेला मिस नहीं होता था, भले तबीयत कैसा भी हो। भाई साहब का अनुभव में सुनाया, भाई साहब गया बॉम्बे में था, दादी का तबीयत खराब था, टेलीफोन आया, भाई साहब आया यहां तो दादी डायमंड हॉल में। क्या है ये सब मिरिकल है। मिरिकल तब हुआ जब वो बाबा की लगन में मगन है। बाबा की लगन जो है, व्यक्ति को जो परिस्थिति नहीं होने वाला वो भी हो जाएगा, मगर इतना प्यार हमारे अंदर है, इतना अपने आप को निर्दोषी बनाया, उतना हमारे अंदर लगन है। बस अभी एक सेकंड में, समझो अभी हम यहां बैठे हैं, एक सेकंड में डिटैच होकर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अभी आप लोग सब बैठे हैं ना, एक सेकंड के लिए सोचो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, क्या अनुभव होता है देखो। ऐसा हम शांति का अनुभूति सारा दिन में कितने बार करते हैं। जैसा अभी यहां मधुबन में रहते उनकी तो बात अलग चीज है, मगर जो बाहर से आते हैं, एक दिन के लिए आते, 24 घंटे में मैंने कितना पाया, कितने बार चारों धाम मैंने गया, चारों धाम का वो अनुभूति दिल के अंदर छाप लगा। चाहे वहां सेंटर पे बैठे हैं, मगर बुद्धि रूपी विमान द्वारा तो पहुंच सकते हैं चारों धाम में। अभी कितना अच्छा सुंदर अभी टीवी द्वारा चारों धाम कंटिन्यू दिखा रहे। क्योंकि आप देखा गए तो हर सेकंड परिस्थितियां, या समझो संघ का दोष, संघ दोष माना, जब संघ ये भाई मेरा फ्रेंड है, सच्चा दोस्ती है, पहले से दोस्ती है, मगर ये दोस्ती के कारण वो अभी क्लास में नहीं गया, या मुरली में नहीं, ये योग में नहीं गया, या उधर चिंतन चल रहा वो क्लास में नहीं गया, उसको देखने के कारण मैं भी क्या हो गया, ढीलापन आ गए। ऐसा हम जितना इस ज्ञान में अकेलापन की माना, मैं एक ही हूं बाबा का लाडला बच्चा, चुना हुआ रतन। यदि हमको नशा चढ़ाना है, एक मैं छोटी सी अपनी अनुभव का सुनाता हूं, मैं हमेशा सोचता हूं यदि भारत का या वर्ल्ड का नक्शा ले लो तो मैं किस कोने में था, एक डॉट 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 में था, कहाँ आंध्रा, आंध्रा में भी कहाँ वो गांव, गांव में भी कहाँ घर, वहां से किसने चुना? मैं खुद तो आ नहीं सका, मैं खुद तो पहचान नहीं सका, मगर बाबा ने चुनकर अपना बच्चा बनाया, वहां तक भी छोड़ा नहीं, अपना बच्चा बनाकर प्रॉपर्टी का दिया, प्रॉपर्टी दिया। प्रॉपर्टी क्या है? अलौकिक जीवन, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्तियां, सब कुछ दिया। वो देने के बाद क्या किया? देने के बाद कहा बांटो, उतना तक अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से क्या होगा? तालाब वहां रुकने से पानी क्या होगा? खराब हो जाएगा। मगर बांटते रहे तो बढ़ता रह जाएगा ना। इस तरह वो शक्तियां दिया। उसके बाद कहा बस बाबा और मैं, प्यार बढ़ गया कि नहीं? ये नशा चढ़ा कि नहीं? मेरे को बाबा ने चुना। एक बार आप एकांत में बैठ के, भाई साहब का मैं हमेशा कहता है जाओ, कहाँ कहाँ जाना है? नदी के किनारा जाओ, नहीं तो गार्डन में जाओ, अकेला बैठो, अपने आप को चिंतन करो, गहराई में जाओ। मैं सचमुच ब्राह्मण जीवन में वो अलौकिक अनुभूतियां कर रहा हूं, वो हो रहा है। या मैं परदर्शन, परचिंतन, परमत पे ही चल रहा हूं? क्या मैं दूसरों को ही देख रहा हूं? अलौकिक अनुभव नहीं हो रहा या अनुभव अनुभूतियां नहीं हो रहा, माना कोई ना कोई बात मेरे को नुकसान कर रहे, कोई ना कोई बात बीच में ब्राह्मण जीवन में परफेक्ट बनने नहीं दे रहे। क्योंकि ईश्वरीय जीवन में अनुभूतियां करने का अभी समय है। ये समय भी होने का, अभी लॉकडाउन में क्या हुआ? घरों में बैठे थे। जिसने पहले अनुभूति किया, स्थिति बनाया, उसको खुशी में नाच रहा था। हाँ, और ही ज्यादा अनुभूतियों में, ज्यादा टाइम योग करने के, ज्यादा मुरलियां पढ़ने की अच्छी उसने विधि अपनाया। किसी किसी ने जो क्या, अरे ऐसा कैसा भय या चिंता, कितने लोगों को बाहर के जो सेमी ब्राह्मण जो थे उनको क्या चिंता लगी पड़ी है, कब ये लॉकडाउन खुले, कब मधुबन जाए। मगर मधुबन का अनुभूति घर में बैठे भी वहां अनुभूति कर सकते हो। कब अनुभूति कर सकते हो? वो आपका संकल्प रूपी जो विमान है, बुद्धि रूपी विमान में यहां पहुंचकर। क्योंकि बाबा ने बोला अभी अव्यक्त पाठ तो हो गई पूरा, माना अव्यक्त पाठ, बाबा साथ में चलेंगे, बाबा के साथ। मगर बाबा कहता है बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ, कहां वतन में आओ, वहां ना टाइम है, ना दिन है, ना रात है। जितना मिलन बनाना है बना सकते हो। ऐसा अनुभूति हम ब्राह्मण जीवन में हो रहा, उसलिए एकांत में बैठ के अपने आप को चिंतन करना होगा, अपने आप से पूछना होगा, क्या चंद्रशेखर आप कुछ विशेष अनुभूति कर रहे हो, या मधुबन में समर्पित हुआ ऐसे खाना पीना सोना हो रहा? क्योंकि वो अनुभव जब अपने आप से पूछेंगे, जरूर हमको इस बात से मेरा विघन पड़ रहा, इस बात से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, ये बात मेरे को माना जो विशेष पुरुषार्थ करना है इस बात के कारण नहीं कर पा रहा हूं। और बाबा हर बच्चे को ये चांस दे रहा, बाबा कुछ बनाना चाहता है अपने को, हमारे अंदर शक्ति बढ़ना चाहता है। मगर वैसा लायक, वैसा पात्र बनाऊं, वैसा बाबा से मैं टचिंग में हूं। जब बाबा देने वाला हाथ है मगर लेने वाला सो रहा तो क्या होगा? उसलिए बार बार चेक करो, एकांत में बैठ के अपने आप से, ये सुंदर विधि है, अपने आप से बात करो। बात कर जब बाबा को सारा समाचार दो, बाबा आपको किसी न किसी मुरली में टच कराएगा। उपाय शुरू में मैं एक बार, बहुत बंधन था मेरे लौकिक में, जब ज्ञान में आने के बाद यहां मधुबन में भी आ नहीं सकते, वहां सेंटर पे भी जाने का, तो मैं पीछे गेट से जाता था, सेंटर के पीछे गेट से जाके मुरली, बहनों के कमरे में बैठकर मुरली पढ़ के आता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, मैं
बहनों के ऐसी माँ दुकान में बोला मैं अभी आता हूँ, मैं गया अंदर, चप्पल तो सामने छोड़ा, वो अंदर गया, मुरली पढ़ रहा था, पढ़ रहा तो वहाँ तुरंत वो आया देखने के लिए, कोई माना भाई या कोई वो देखने के लिए आया, मेरे को बहनों ने इशारा किया, मैं पीछे गेट से वहाँ बिना चप्पल का चल पड़ा दुकान में, वो चप्पल देख रहा यहाँ है वो अंदर है, वो सारा जांच किया मगर वहाँ नहीं, चप्पल है। उसलिए क्या है, जिसको लगन होगा ना, जिसको बाप से प्यार होगा ना, कोई भी बात उसके लिए रुकावट नहीं डाल सकती है, ये गारंटी है। क्या नहीं हुआ यज्ञ के अंदर शुरू से लेकर अभी तक हिस्ट्री में, पिकेटिंग किया, इतना छोटे बच्चे थे, विजय पाया ना वहां। मेरे को याद है एक बार कोई बात ऐसी थी यज्ञ का आया था, दादी ने बोला 3 दिन अखंड बट्टी योग करो मधुबन वालों को। उस समय मेरे को याद है हरेक को कंपलसरी 2 घंटा बैठना है, ऐसी बट्टी चली 3 दिन, वो जो बड़ी बात थी यज्ञ के लिए वो एकदम सूली से कांटा, एकदम कोई ऐसा जैसा बोलते हैं ना धागा, पतला धागा बस। क्योंकि सब बातों के लिए बाबा को हमको इतना इजी बनाया, किसी को दोष क्यों देते हो, जरूरत नहीं है। मगर अपने आप को जांच करेंगे तो हमारे अंदर हम निर्दोष कहां तक बनाए ये चेक कर लो तो पता चलेगा। हम जैसा जैसा ही वो स्थिति में आ जाएंगे निर्दोषी, किसी को देखने का आदत छूट जाएगा हमको, वो ऐसा है, ये ऐसी है, ये परिस्थिति ऐसी है, ये समय ऐसी है, इसके कारण मेरा ऐसा हो गया पुरुषार्थ, ये सब बातें से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने का विधि यही है, हमारा पक्का अमृत वेला, पक्का मुरली काज, और ये साथ साथ अव्यक्त मुरलियों का रिवाइज। मेरे को याद है कंटिन्यू भाई साहब ने प्रोग्राम बनाया था अव्यक्त मुरली, रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ने का, मगर हमको हम इतना लक्ष्य नहीं रखा था, मगर जब पता चला ये सब पढ़ रहे मैं तो पीछे रह गया, मैं शुरू किया तो बहुत मेरे को मजा आया। उसलिए हमारे अंदर ब्राह्मण जीवन के अंदर कुछ विशेष अनोखा अनुभूति करना चाहते हो, या परफेक्ट बनना चाहते हो, या दोष मुक्त होना चाहते हो, तो अपने को अपने आप टीचर बनकर बात करो, अपने आप को दो, क्या दो, लक्ष्य दो, मैं 1 मास के अंदर ये अव्यक्त मुरलियों का रोज पढ़ना है मेरे को, या रोज मैं आधा घंटा एकांत में बैठकर बाबा की एकदम गहरी प्यार का अनुभव करना है। जैसा सिर्फ मैं एक शांति का शब्द कह रहा कहा था, शांति का 1 सेकंड की, मगर ऐसी कितने बातें हैं, प्रेम है, आनंद है, खुशी है। क्या सचमुच मैं बाबा का बच्चा बनने के बाद वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर रहा हूं, वो महसूस हो रहा? क्योंकि यह अलौकिक जीवन मजे की जीवन है, कोई सूखा जीवन नहीं है। इसके अंदर बहुत, यदि जिसने ब्राह्मण बनने के बाद वो अलौकिक जीवन की वो जो अनुभूतियां है ना, कैसा पता चलेगा उसका चेहरा देखते ही। मेरे को याद है एक बार बस गया था सौराष्ट्र में, मधुबन वाले भी गए थे उसमें, मधुबन वालों को एक बिल्डिंग दिया था रहने के लिए, वो जैसा सवेरे मुरली होता है वहाँ से तैयार होके सब आ रहे थे, सब साइलेंस में जैसा जाते हैं वो जा रहे थे, जा रहे तो वो बाहर सवेरे सवेरे उठ के देख रही है, क्या इनके पास मुर्दा नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग ऐसा इतना शांति में कैसे जा रहे। माना ये किसका हुआ, ये वाइब्रेशन जो है, इस तरह हमारा चेहरा देखते ही लोगों के अंदर खुशी, जो निस्सार जीवन को सार का अनुभव हो, उनको कुछ मिले, मिले तब जब हम हमारे अंदर वो भावना उसके प्रति देने की भावना हो, हम उसको दोष के भावना से नहीं देखो। मैं बोलता हूं भले भले जरूर भाई आप चिट्ठी क्यों नहीं लाया, मगर इतना बोलता हूं मगर देना तो है, देना तो यहां आने के बाद तो होता नहीं है, दे देते हैं। मगर ये क्या है, इसका जो बाबा ने नियम बनाया उस नहीं क्या है, एक नियम बनाया, जैसा देखो अभी 100 का सीट है, 200 आ गए तो दिक्कत तो हो जाएगा, थोड़ा एक सेकंड के लिए परेशानी तो होगा, वो आने वालों को भी फिर समाना पड़ेगा भाई एक को दो। मेरे की याद है, एक सुंदर बात सुनाता हूँ, सुंदर भी नहीं कहेंगे, एक टीचर्स का ग्रुप था, 16 टीचर थे, 16 टीचर ट्रेनिंग सेंटर में ही चाहिए उनको, माना वो कमरे ट्रेनिंग से, वहाँ 10 बेड है, 16 बहने हैं। मैंने बोला बाहर आपको जगह देता हूँ, दूसरा जगह जाओ, यहाँ से माना पांडव भवन छोड़ के थोड़ा सा दूर है बिल्डिंग, वहाँ जाओ। उनको बोला नहीं हमको पांडव भवन के अंदर ही चाहिए। बोला देखो बहन आपको मैं 2 रूम दे रहा हूँ, 5 बेड का, 5-5 बेड का, 10 बेड है मेरे पास, आपको जो सुविधा चाहिए वो दे सकता हूँ, मगर आप लोग ये 2 कमरों में रहना है तो रहो। वो लोग रहे, बड़ा आनंद, उनकी दिल की जो जाते समय जो बोला है भाई साहब बहुत बहुत थैंक्स, भले हम जगह कम था मगर नीचे लिया, बिस्तर लिया, सोया, नीचे सोया, ऊपर सोया, मगर पांडव भवन के अंदर रहना है। देखो उनके भी कोऑपरेशन मिला मेरे को और वो भी अनुभूति करके गई। इस तरह संख्या बढ़ने से हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं कहता हूं जो भी आ रहे पहले ही इन्फॉर्म करने से जो भी रास्ता निकलेगा वो निकाल देंगे, वो तो होता है, वो तो कई बार होता है ये सब चीजें। माना किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, जितना हो सकता है हम परफेक्ट बनकर हम निर्दोषी बनने का लक्ष्य रखेंगे तो जरूर आज नहीं तो कल निर्दोषी बन ही जाएंगे, मगर हमारे अंदर ये लक्ष्य होना है कि एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करना होगा, अपने आप से चिंतन कर लिखना होगा। इस प्रकार हम करने से किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ओम शांति।